आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार। आइए आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मेलबर्न की प्रियंका जैन और अभिजीत पॉल के साथ। प्रियंका जैन अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से भारतीय संस्कृति और विज्ञान इससे जुड़ी हुई अपनी प्रस्तुतियाँ देती रही हैं। कुछ समय पहले उनकी विजुअल आर्ट मेलबर्न की एक गैलरी में दिखाई थी, साथ ही दिखाई दी अभिजीत पॉल की अनूठी कला भी। अभिजीत विजुअल एथनोग्राफी में विशेषता रखते हैं, यानी फोटोग्राफी के माध्यम से वो वर्ग विशेष को गहराई से सामने लाते हैं। इन दोनों ही कलाकारों के साथ बात करने का मौका मिला और जानना चाहा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनियाँ कितनी सफल हो रही हैं। तो उन्होंने बताया,
मेलबोर्न में बहुत सारा है।
प्रियंका जी, आपको क्या लगता है?
अब आई थिंक यहाँ पर एक अवेयरनेस है टू मेक इट अ वेरी मल्टी कल्चरल सोसाइटी, एंड ये भी कि सबके पास बोलने को, कहने को, प्रदर्शन करने को कुछ ना कुछ है। तो दूसरों की तरफ से वो जागरूकता कि हाँ, मुझे जानना है, मुझे जिज्ञासा है कि एक इंडियन या एक मलेशियन क्या सोचता है, दुनिया को कैसे देखता है। तो वो बाकी समाज के बाकी लोगों की तरफ से जब वो जिज्ञासा रहती है, तब ऑटोमेटिकली ये जो अलग अलग कम्युनिटी के आर्टिस्ट्स हैं उनको फिर वो महसूस होता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ के कुछ दिखा सकता हूँ।
एक दूसरे के लिए समझ बढ़ती है और एक तरह से आर्ट का भी विस्तार होता है, हम प्रभावित होते हैं और आर्ट वो किसी भी सीमा में बंधी हुई नहीं होती है, बस आपको उसके भाव को समझना है। तो जब हम भाव की बात करते हैं तो आप भारत से आती हैं, अभिजीत जी आप भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से आप हैं, तो वो जो संस्कृति और सभ्यता है, आपका अपना आर्ट उससे किस तरह से प्रभावित होता है?
सबसे पहले तो कि हमारी पढ़ाई भारत में कलकत्ता में जहाँ से हम आते हैं वहीं से हुई है, और वहाँ पर हम लोगों ने कला के साहित्य के बारे में पढ़ा है। तो अजंता की चित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, अभिनंदनाथ टैगोर की चित्र, तो हमें हमारी पूरी हमारे देश की जो इतनी प्राचीन सभ्यता की कला के बारे में कॉलेज में रहते रहते पता चल जाता है
जी।
तो बाकी जो हमारे देश में इतने प्राचीन मंदिर हैं और इतने सालों से लोग जो कला करते आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि जनरली कलाकार अपने समाज को, अपने समय को प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो पहले के लोगों ने कैसे किया है और उससे हम प्रभावित होके आज के समाज को देखने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब रिलेशनशिप्स हैं और कैसे समय इतना जल्दी जो परिवर्तन हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं सोचने के लिए
जी। और उसी से आप अपने भावों को एक नए नए मीडियम में प्रस्तुत करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में विजुअल आर्ट है। अभिजीत जी, आपका काम एक अलग तरह का मीडियम है विजुअल आर्ट में, तो कैसे आप मीडियम चुनते हैं, वो थॉट प्रोसेस क्या होता है?
मेरा काम के लिए मीडियम बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेशली डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले वो है जो आप एग्जीबिशन हॉल में आके देखते हैं। मैंने स्टूडियो में क्या किया, कैसे काम किया, आप तो वो नहीं देखेंगे। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं ऑलवेज चूज करता हूँ कि कौन सा मीडियम कैसे वो लोगों के पास बहुत इजी तरीके से चले जाए, लोग पहले अट्रैक्ट हो जाए, वो देखे, देखने के बाद उसको सोचना शुरू करे कि ये ऐसे क्यों है। क्योंकि कुछ कुछ आर्ट होता है जो बहुत भारी हो जाता है लोगों के लिए, और वो ना लोग उसको जस्ट स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन मैं ऑलवेज ऐसा काम करता हूँ कि वहां पे आप रुक जाओ, को रोकने के बाद लोग जब सोचेंगे ना, उसका दिमाग से वो बहुत कुछ चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो काम था, पहले एक फोटोग्राफी है, उसके ऊपर स्टिचिंग का काम है। स्टिचिंग मतलब, मैं इसीलिए बोला कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सपना बुनते हैं। तो जो सपना बुनते हैं, वो अगर मैं बुनना को बनाऊं तो वो वीविंग स्टिचिंग से ही आता है। तो यहां से मेरा वो थ्रेड आया कि मैंने सपना बुना। तो इसीलिए मैंने ये मीडियम चूज किया। सेकेंडली जो बीच का वाला है, वहां पे मैंने वो वीडियो रखा। हम लोगों का सपना स्टैटिक होता है, हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए मैंने वहां पे वीडियो रखा कि हम लोगों का लाइफ चल रहा है, मूव कर रहा है जी। लेकिन लास्ट में जो है वो एक प्लांट है। वो मैंने कोई आर्ट नहीं, कोई फोटोग्राफी नहीं, कुछ नहीं रखा। वो सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सत्य है, उसका नाम ही है इटर्नल ट्रूथ, जो अल्टीमेट सत्य है। वो है कि वो प्लांट, एंड प्लांट के नीचे वो हम लोग रह जाएंगे एक दिन, हम लोग नेचर में फिर मिक्स हो जाएंगे
जी। प्रियंका जी, आपका जो मीडियम है वो विजुअल है, न्यूरॉन्स। वैज्ञानिक तौर पर वो पूरी कथा है, हम बहुत कुछ जान लेते हैं। माइग्रेशन भी है उसमें, उसमें पॉपुलेशन भी है, और उसमें पॉपुलेशन का बिहेवियर भी है। क्या था वो पल जहां से ये शुरुआत हुई?
मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट, हम सॉर्ट ऑफ बहरूपिया होते हैं। हम समाज में अलग अलग चीजें देखते हैं, और मतलब मुझे तो यही लगता है कि एक आर्टिस्ट का काम होता है कि वो किसी के भी जूते में घुस के वो उस जैसा बन जाए। तो आज का जो समाज है वो काफी वैज्ञानिक है। ये जो पिछले 150 साल का समाज है, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से लेके अभी तक का, और ये कोविड के बाद और ज्यादा वैज्ञानिक बनता जा रहा है। गांव-गांव में लोगों को पता है ऑक्सीमीटर क्या होती है, बच्चों को मालूम है कि एक वायरस क्या होता है। आज हम जब खाने की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारी भाषा, हमारी सोच में एक वैज्ञानिकता आ रही है, तो ये मुझे इंस्पायर करता है कि हम किस प्रकार के इंसान बनने जा रहे हैं। तो आज जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वैज्ञानिक है, वो छोटे छोटे लेक्चर्स में हमको बता देते हैं, बहुत कुछ आसान तरीके से समझा देते हैं। तो मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैंने लास्ट क्लास 10 में साइंस पढ़ाई करी थी, लेकिन क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि इतना वैज्ञानिक ज्ञान इतनी आसानी से मिल जाता है, तो ये मेरे को प्रभावित करता है मेरे कला में इसको प्रदर्शित करने के लिए। और मतलब कि साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब बहुत अजीब तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो एक मेरी खुद की क्यूरियोसिटी और एक आर्टिस्टिक क्यूरियोसिटी ये समझने में कि हम हर चीज़ों में कैसे इतने जुड़े हुए हैं, इतने इंटरकनेक्टेड हैं, कौन सी पॉलिसी कहाँ किस चीज़ को एक नए चीज़ को जन्म दे देती है। तो ये है मेरा इंस्पिरेशन कि कैसे मैं, और फिलहाल अभी न्यूरोसाइंस खुद को एक गोल्डन एज में मानता है कि, और अभी जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि हमारे ब्रेन में करीबन जितने करोड़ों नर्व सेल्स हैं, अब ऐसा हो चुका है कि हम एक एक नर्व सेल को, जैसे कि एक तार का कनेक्शन, हर एक तार को हम पता कर सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी फिलहाल न्यूरोसाइंस में इतनी तरक्की हो चुकी है कि वो एक एक इसको तार के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक तार को समझ लेना और पूरे इंसान को समझ लेने में फिर भी हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो ये जो हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ, पूरी गुत्थी सुलझ जाए, लेकिन जिंदगी की गुत्थी कभी सुलझती नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है एज एन आर्टिस्ट सोचने के लिए
जी।
बेसिकली सब मेरे काम में एक फिलोसफी आता है, इंडियन फिलोसफी मेनली आता है। मैं काम में एक फिलोसफी बताने का कोशिश करता हूँ। एक दिन मैं स्प्रिंगवेल सेमेट्री में बैठा था और वहां पे मैंने देखा कि बहुत छोटा सा एक डिब्बा, और डिब्बा में एशेस रखा हुआ है और उसके ऊपर किसी का नाम है, और उसके नीचे उसने लाइफ में क्या 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 किया है उसका एक बड़ा सा लिस्ट लिखा है, एंड वो ना एक पैर के नीचे ही है, वहां पे बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। तो वहां से मुझे लगा कि ये इंसान, ये जो भी है, एक दिन लाइफ में बहुत कुछ किया है, बट आज क्या है, वो एक छोटा सा बॉक्स में रह गया है। यहां से मैंने इंस्पिरेशन शुरू किया इस काम के बारे में, जो आपको लास्ट में आके दिखता है कि वो मैंने जो वहां पे प्लांट रखा और प्लांट के नीचे मैंने थोड़ा आर्टिफिशियल बोन रखा जस्ट टू सिंबल दिखाने के लिए, वो मेरा इंस्पिरेशन है। और बाकी जो मैंने दिखाया वो मैंने टू टेल द स्टोरी बनाया। बट यहाँ पे जो सपने बुनने का बात था, वहां पे एक काम था जो एक छोटा सा घर है और उसके ऊपर मैंने एक मेंशन ड्राइंग किया या स्टिचिंग किया। बेसिकली क्या है, ये मैंने सच में मेरे लाइफ में जब मैं छोटा था, अगर वो टेक्स्ट बुक आप देखोगे वहां पे मैंने सब के पीछे मेरा पिताजी का जो घर था वहां, उसका प्लान मुझे कभी पसंद नहीं था, तो मैंने वो प्लान किया था। वो बेसिकली आर्किटेक्चर का जो प्लान है मैंने बहुत किया। एंड वो जो मेरे पिताजी ने ग्राउंड स्टोरी बनाए थे, तो वो फर्स्ट फ्लोर बनाया है वो मैंने बनाया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, मेरा जो छोटा जब मैं बच्चा था तब मेरा जो प्लान था उसके हिसाब से। तो बात है कि ये कंटिन्यूटी मैंने किया कि वो सपना, वो डिजायर हो जाता है जो हम लोग छोटे टाइम से बनाते हैं, एंड उसके वो फुलफिल करने के लिए हम लोग कितना गंदा काम करते हैं। बिकॉज टू फुलफिल आवर डिजायर वी डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी रन टू अचीव दिस आवर डिजायर। एंड उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा ऐशेस होके रह जाते हैं, और हम लोग आज एक छोटा छोटा सपना पूर्ण करने के लिए क्या नहीं करते। सो दिस फिलोसफी, यू नो दैट इट इज ऑलवेज माय मेन थिंग, मैं वो करने का कोशिश, वो दिखाने का, वो समझाने का कोशिश करता हूँ।
जी, भारतीय दर्शन ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसका साहित्य है, इतिहास है, इतनी पुरानी सभ्यता है और इतने अलग अलग दर्शन की बातें होती हैं। और ये दर्शन, जब आप एक समाज का दर्शन समझ लोगे तो फिर उस दर्शन से आप प्रभावित होते हो और आप उस दर्शन को या तो बनाए रखने में या तो आप उसे और ज्यादा बेहतर करने में आप योगदान दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण, युद्ध के कारण एक इंस्टेबिलिटी हमेशा अब हमारे जिंदगी में रहने वाली है। समाज एक बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा फ्लूइड एक स्थिति में जाने वाली है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एज आर्टिस्ट हम ये इस चीज के बारे में बात करके, ये धर्मों में हमेशा लिखा है कि कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता है, तो वो हम अब देख रहे हैं और यही फिर हम आर्ट के थ्रू इसी दर्शन को किसी तरह व्यक्त करने की कोशिश करते हैं।
जी, जैसा कि आपने कहा कि आर्ट के माध्यम से हम एक दूसरे के दर्शन को समझ पाते हैं, वो पूरी सोसाइटी को प्रभावित करती है, सबको जोड़ सकती है, आर्ट समाज को बदलने में योगदान दे सकती है। प्रियंका जी और अभिजीत जी, बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के साथ बात कर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप।
धन्यवाद।
धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।